इतना कीमती और इतना निर्माण शब्द दिता, क्या सिखा ने झोली च पाया? जितना प्रबल हंकार गुस्ताखी माफ सिखा दे देखण नु मिलदा है, शायद ही किधरे देखण नु मिले। जितने कदम ने मुसलमाना की दुनिया देखण नु मिलदी है, शायद ही किधरे मिले। और जितना टुटा हुआ प्रेम ईसाइया की दुनिया च मिलता है, शायद ही किधरे मिले। और जितनी अज्ञानता गुस्ताखी माफ हिंदुओं की दुनिया च मिलती है, शायद ही किधरे मिले। मैं लफ्ज दोहरा दें, मनुख की समस्या है कि मनुख दुखी है, आर्थिक तलते, शरीरक तलते, मानसिक तलते, परिवारक तलते। एक तो रहबरी पुरुष सामने आए, अवतारी पुरुष पैगंबर, उन्होंने समस्यावां का समाधान रखा। एक राजनीतिक लोग अगे आए, बेसी समझा जो है सुलझावांगे, राजनीतिक, परिवारक, आर्थिक। तो मैं इस तरह राजनीतिक लोगों ने जिड़ी दवाई दिती, उस नाल ते रोग दूर नहीं होया। ते महापुरुषा ने जिड़ी दवाई दिती, वो मरीजा ने खाधी नहीं, वो सुट दिती परे। तो रोग अपनी थां ते मौजूद है, समस्या अपनी थां ते मौजूद है। सारी दुनिया दुखी है, बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। दुख ते अपनी थां ते, चलो कोई शरीरक तल ते दुखी नहीं होवेगा, आर्थिक तल ते होवेगा। तो जे आर्थिक तल पर दुखी नहीं है तो कम से कम परिवारक तल पर होगा। तो जे परिवारक तल पर भी दुखी नहीं है तो कम से कम मानसिक तल पर होगा, राजनीतिक तल पर होगा। कोई दावे नाल नहीं कह सकता कि जिंदगी के हर पहलू च मैं सुखी हाँ, कोई भी नहीं है। महाराज कहते हैं, किस पे खोलो गंठड़ी, दुखी भरा आया। मैं अपनी दुखा की पंडके के अगों खोला, अजय मैं खोलन लगता अगला पहले ही खोल के रख देने। मैं एक दुख की गल करना, अगले दस सुना देने। किनू सुनाई है? किस पे खोलो गंठड़ी, दुखी भरा आया। राजनीतिक लोगों ने जो समाधान पेश किए, नहीं समस्या हल हुई। महापुरुषा ने जो समाधान पेश किया, वो कबूल नहीं होया, वो प्रवान नहीं होया। इस्लाम मुसलमानों नू कबूल नहीं होया, गुस्ताखी मां। ज्ञान हिंदुओं नू कबूल नहीं होया, प्रेम ईसाइयों नू कबूल नहीं होया, सिखी सिख नू कबूल नहीं हुई। क्या है? क्या सिखां गुर सिखी है? सिखी विच प्रेम है, सिखी विच ज्ञान है, सिखी विच अमन है, सलामती है। वो एक एक गुण देने सिखी सारे ही गुण आ जाते, गुरु की मत में सब कुछ आ जाता है। क्या यह है? लोग है जमीन पे मुसलमानों के बाद अगर कोई आपस में लड़ रहा है सब तो ज्यादा, तो वह सिख ने। मुसलमान लड़ रहे हैं बाजार विच, परिवार विच, सिख लड़ रहे हैं गुरुद्वारों विच भी। मुसलमान नाल एक कदम अगे चला गया, वो लड़ रहे हैं बाजार विच, वो लड़ रहे हैं परिवारक तल पे, खूब लड़ रहे हैं। सिख की लड़ाई इतनी अगे बढ़ गई, गुरुद्वारों च लड़ रहे हैं और रज के लड़ रहे हैं। और सहजे सहजे जैसे गुरुद्वारे लड़ाई झगड़े के अखाड़े बने, तो लाभ उठा ले गए राधा स्वामी, निरंकारी, नामधारी, किले वाले, और पता नहीं कितने लाभ उठा के लेके गए। भई आओ थानू असी प्रेम देइए, शांति देइए, सुकून देइए, नाम जपाइए। कुदरती गल है, जब सोना ना मिले तो मुलमे की बण आती है, जब हीरे ना मिलन तो चमकते पत्थर भी बिकते हैं। जब सूरज नो बदलों के ओले छुपा के रख दईए तो मजबूरी कई दीवे जला के बैठ जाते हैं, मजबूरी। ये मैं इस वास्ते थोड़े सामने अर्ज की थी कि ये सारे रस्तिया के नाम ने। सिख मत एक रस्ता है, जैन मत एक रस्ता है, बौद्ध मत एक रस्ता है, इस्लाम एक रस्ता है, वैदिक मत एक रस्ता है, ईसाई एक रस्ता है, इस्लाम एक मार्ग है। सब रस्ते हैं, ये संसार तो शुरू होते हैं, निरंकार तक पहुँचते हैं। और मैं इस क्रम में किसी भी रस्ते का निंदक नहीं, सब रस्ते पहुंचते हैं परमात्मा तक। इस्लामी रस्ते पे चल के भी कई पहुंचे ने, जैसे कि फरीद। वैदिक मार्ग पे चल के भी कई पहुंचे ने, जैसे कि भगत, जयदेव, रामानंद। और इसी तरीके के नाल ਸਿੱਖ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੰਜ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚਲੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਦੰਦ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇ? ਔਰ ਜੇ ਦੰਦ ਦੁਖਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਹਥੌੜਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਲਾਸ ਉਸਦੇ ਹੱਥੇ 'ਚ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ ਜਾਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੰਦ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਹੰਕਾਰ? ਤੇ ਬੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਔਰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਜਿਸ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਮਹਿਫਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਸੱਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਤ ਸੰਗ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਤਸੰਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਸੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਬੋਲਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸਦਾ ਸੋਚਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਝੂਠ ਸੰਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਕਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤਕਣੀ ਵੀ ਝੂਠੀ, ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਝੂਠ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਝੂਠ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਝੂਠ, ਇਹ ਝੂਠ ਸੰਗੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਸੱਤ ਤੱਕ, ਸੱਚ ਤੱਕ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪੜਾਓ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਧਰਮ ਖੰਡ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ, ਸੱਚ ਖੰਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਨ ਮਨ ਆਤਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਬਣਾਏ, ਤਨ ਮਨ ਆਤਮਾ। ਤੋ ਤਨ ਲਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਮਨ ਲਈ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ, ਆਤਮਾ ਲਈ, ਮਨ ਲਈ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਲਈ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। तन नू लीन करो कर्म कांड दे तीर्थां दा रखन इशनान वर्त रखने ने पूजा करनी है अर्चा बंधन करना है धूप दीप करना है ये सब कर्म कांड कांड उपासना कांड ध्यान साधना करनी मन नू जोड़ना है और फिर ज्ञान कांड फिर इन्हां दो कर्मा करके कर्म कांड करके उपासना कांड करके ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस्लाम ने तीन पड़ाव दसे चौथी मंजिल शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत हकीकत कहने ने सच्चाई नो मोहम्मद साहब ने भी सच कह देता है भाई खुदा की है हकीकत सच्चाई जो सच तक पहुंच गया खुदा तक पहुंच गया। तो पहुंचण दे तीन पड़ाव दसे ने शरीयत पहले शरा दे चावे जो मैं शरा दसी है सुन्नत रखे और बकायदा शरीर कानून जो समाजिक तल ते राजनीतिक तल ते ते शरीरक तल ते है उदी धारणा करे उनु कबूल करे। इस्लाम विच पड़दा है स्त्री लई इस्लाम विच हज करना लाजमी है रखना लाजमी है पांच वक्त नमाज पढ़ना लाजमी है शरा शरा तो बाद तरीकत कुछ छोड़े कुछ त्यागे कुछ त्याग करे त्याग की भावना अपने अंदर पैदा करे किधरे धन का त्याग किधरे हंकार का त्याग और किधरे अपनी जिंद जान का भी त्याग जो लोड़ पै जाए जहाद का नारा लाया सी त्याग तरीकत त्याग तो बाद मार्फत फिर बैराग चाहिए बैराग कि जगत कुछ भी नहीं है सब कुछ सच है एक बिरती चाहिए बैरागी मार्फत ते बैराग तो लंघ गई खुदा की प्राप्ति हकीकत शरीयत तरीकत मार्फत हकीकत। गुरु नानक आरंभ कर देने धर्म खंड तो धर्म खंड ज्ञान खंड और फिर शर्म खंड कर्म खंड ते फिर सच खंड। धर्म खंड की है अपने आप दे एक कम से कम एक घंटा मेरे को मंगता है तो इतने आके जिस ढंग प्रबंधक सज्जना ने प्रोग्राम बनाए ने मैं उसकी जिम्मेवारी निभानी है। इन चार खंड ते पंजवी मंजिल दी विचार आप कल करांगे धर्म खंड ज्ञान खंड शर्म खंड कर्म खंड सच खंड ते विचार विच तुसी ए अनुभव करना कि असी केड़े पड़ाव ते आ धर्म खंड विच खड़े हाँ ज्ञान खंड विच खड़े हाँ शर्म खंड विच खड़े हाँ कि कर्म खंड विच पहुंच गए हाँ या सच खंड वासी हो गए। बदकिस्मती है कि असी मुरदियां नाल जोड़ दिता है कोई मर जाए सच खंड वासी हो गया नहीं जो जीवदियां जी सच खंड वासी नहीं होया मर के नहीं हो सकता ए जीवदियां जी जिसकी सुरत सच दे चलीन होगी सच की परमात्मा सच की ईश्वर सच की निरंकार सच की परिपूर्ण परमात्मा जिस दे सारे दैवी गुण आ जाते हैं जिहड़ा उत्थे तक पहुंच गया जिहड़ा उस दे च जी रहा है सच खंड वासी। और उस तो पहले चार पड़ाव ने धर्म खंड ज्ञान खंड शर्म खंड कर्म खंड इन्हां दे विचार कल आप जी के सामने रखांगे क्योंकि 8 बजे दूसरे गुरुद्वारे दास ने हाजिरी करनी है। इतनी विचार प्रवान करनिया बड़े टिकाओ नाल आपने गुरबाणी विचार नूं सरवण कीता पातशाह रहमत करन बख्शिश करन कि इस मार्ग ते थोड़ी सुरत चल सके। ते मैं अर्ज कीती सी ए मार्ग ऐसा है जैसे मच्छी चलदी है पानी दे ते रस्ता बनदा है उंज कोई रस्ता नहीं। मनुख जब वाहेगुरु जपदा है रस्ता बनदा है उंज कोई रस्ता नहीं उंज कोई मार्ग नहीं। इस तरह का बना बनाया मार्ग नहीं है जिवें जमीन देते सड़क हैं ये चलन नाल रस्ता मिलता है उंज नहीं। जपया जपाया नाम नहीं मिलेगा रेडीमेड नहीं मिलेगा। भोजन मिल सकता है बाजार च होटलों च कपड़े मिल सकते हैं रेडीमेड मकान मिल सकता है सब कुछ मिल सकता है नाम जपना पेगा रेडीमेड नहीं मिलेगा जपया जपाया नहीं मिलेगा। ये आपन हथी आपना आपे ही काल सवारी जपदे ही मार्ग बनता है जपदे ही रस्ता बनता है उंज कोई रस्ता नहीं। कल आप इसकी सारी विचार करांगे सारे तौर पर धन्यवाद भुल चुक दी क्षमा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह।
सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आदमुनी सैभं गुरु प्रसाद कहां तुझ प्रभु बुद्ध हमारी वर्णन सके महिमा जो तिहारी हम ना सिफत कर सकत तुम्हारी आप ले ओ तुम कथा सुधारी कहां लगे एहो कीट बखाने महिमा तो ही प्रभु जाने पिता जन्म जो पूत ना पावे कहां तवन का भेद बतावे सन्मानियो गुरु रूप सत्संग जीओ गुरुदेव दी सनिमर फते प्रवान करने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह जमीन ते जो असी चलते हाँ सफर करते हाँ सानू पता चल जाता है कितनी वाट असी तय कर ली और कितनी अगे रही है जिसनों कहते ने गुरु पंथ पंथ दे अर्थ ने मार्ग रस्ता पंथी राही पंथ रस्ता जो पंथ ते चल रहा है इस रस्ते विच भी कुछ ऐसे ने जो चल के पहुंच जाते ने कुछ अध विचकार कुछ थोड़ी दूर चले आते ने निराशा घेर लेंदी है कुछ चलन की तैयारी करते ने कुछ रस्ता ही पुछते रहते ने और कुछ ऐसे ने जिन्हों रस्ते की सोच ही नहीं रस्ते दे चलन का शौक ही नहीं जिंदगी का यह मुद्दा ही नहीं है मकसद ही नहीं है इनू धर्म मार्ग कहें गुरु का मार्ग कहें गुरु पंथ कल ने अर्ज की सी ये सारे पंथ ने रस्ते ने इस्लाम सनातन मत जैन मत बौद्ध मत ईसाइयत और इसे तरीके नाल सिख मत गुरमत ये मार्ग ने इस मार्ग विच धन गुरु नानक देव जी महाराज ने चार पड़ाव दसे ने ते मजे बस इस दी थोड़ी जिहा अज वजाहत करी जो पहला पड़ाव है इसनू सतगुरु धर्म खंड कहते हैं सनातन मत कर्म कांड कहता है इस्लाम शरीयत कहता है शरा विच आ जाना इस्लाम दे झंडे तले आ जाना कलमा पढ़ लेना और इस्लाम कबूल कर लेना सनातन मत हिंदू मत विच कहते हैं कर्म कांड जितना भी कर्म है शरीरक तल दे पूजा अर्चा बंधन तीर्थां दा रटन दान पुन इत्यादि इनू कर्म कांड कहते हैं पुनिया मसिया मनानी संग्रांद इत्यादि तरह तरह के वर्त यह सारे का सारा कर्म कांड विच आ जाता है बड़ा लंबा चौड़ा इन्हों का कर्म कांड है माघ का इशनान कुंभ का इशनान कुंभी का इशनान तीर्थां दा इशनान बहुत लंबे चौड़े कर्म कांड ने इस तरह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने पांच खंड बयान किए ने जो इस तरह सतगुरु नाम देंदे ने धर्म खंड ज्ञान खंड ज्ञान तो पहले धर्म समझ कुछ भी नहीं पता कुछ भी नहीं ते चल पैना धर्म परमात्मा पहले चरण विच ब्लाइंड फेथ है अंधविश्वास है पता तो कुछ भी नहीं ज्ञान के बाद चलेगा सूझ समझ कुछ भी नहीं है पहले चलना है भरोसा करना है, यकीन करना है कि कोई सच है, भरोसा करना है कि सच है। तो हुण मैं अर्ज कर दिया, बिना देखे भरोसा करना बड़ी हिम्मत की गल है। इस वास्ते अगर ईश्वर नू कोई इनकार कर दे तो कोई प्रत्यक्ष सबूत उसके सामने नहीं रखा जा सकता, नास्तिक की तसली नहीं कराई जा सकती, कोई भी अज तक तसली नहीं करा सकिया। जिहड़ा आखे मैं परमात्मा नू नहीं मनदा, बिल्कुल नहीं मनदा, और मैं तां मन सकदा मैनू कोई सबूत दे वे, सामने दिखावे। ते हुण मैं अर्ज करां, धर्म ग्रंथ ये कहिंदे ने कितना भी वेखीए उस सच नू पूरा वेख नहीं सकते, कितना भी कथन करिए पूरा कथन नहीं कर सकते, कितना भी सोचिए उन्हों पूरा सोच नहीं सकते। तो हुण मैं अर्ज करा जिन्हों पूरा सोच सकते हैं वह मनुख की सोच तो वड्डा नहीं हो सकता, जिन्हों पूरा बयान किया जा सकता है वह जबान तो वड्डा, और जिन्हों पूरे का पूरा वेखिया जा सकता है वह तो अखां का विशा हो गया, अखां तो वड्डा नहीं हो सकता। सही बाणी तो यह कहती है, क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना कथन आ जाए, मैं कथन कर करके वेख लिया वो मेरी कथनी विच नहीं आता, मेरे कहने विच नहीं आता, मैं कह कह के वेख लिया। गुरु नानक देव जी महाराज भी ऐसा फरमान करते हैं, जे हों जाना, जे मैं उस सच नूं जान भी लिया, समझ भी ले, जुड़ भी गया, आखा ना ही मैं कहना नहीं, महाराज मान लिया तो कह दो, रस तुसी मान लिया तो कह दो, पर पता है पातशाह के की कहते ने, जे हों जाना आखा ना ही कहना कथन ना जाए, वो मेरी कथनी विच नहीं आता, वो मेरे कहने विच नहीं आता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी ऐसे को कहा, कहे कहावे, कहा मैं बखानो कहे मो ना आवे, मेरे कहने च नहीं आउंदा, मैं कह कह के देख ले। पहले कदम विच उस परमात्मा ते भरोसा करना जिन्हू वेखिया नहीं, जानिया नहीं, समझिया नहीं, कोई रस नहीं, कोई पता नहीं, ते फिर भरोसा करिए, गल बड़ी कठिन है, औखी है। जब कभी इस तरह का प्रसंग चले तो मैं एक घटना चेते आती है, स्वामी विवेकानंद की। किसी नास्तिक ने उन्होंने प्रश्न कर दिता कि स्वामी जी क्या मनुख लिए ब्लाइंड फेथ की लोड़ है, क्या बंदे नु अंधविश्वास चाहिए करना। एकदम समझ गए विवेकानंद भी ये केड़े तल तो बोलता पै, आखण लगे चाहिए ब्लाइंड फेथ भी चाहिए, पर एक शर्त है, जिसते फेथ करिए वह ब्लाइंड ना हो, जिसते विश्वास करिए वो अंधा ना हो, उन अंधविश्वास भी चाहिए। जिस परमात्मा नु वेख्या नहीं, जानिया नहीं, समझिया नहीं, हुण उस ते भरोसा है ते अंधविश्वास, ज्ञान बाद विच आउंदा है। इतनी मैं अर्ज करदे आ, सनातन मत ने ज्ञान तीसरे चरण विच रखिया है, गुरु नानक देव जी महाराज ने ज्ञान नु दूजे चरण विच रखिया है, दूजे पड़ाव दे विच। प्रथम ते धर्म, ते हुण धर्म की है इसकी गुरु नानक आप व्याख्या करदे ने, राति रुति थिति वार, पाउन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी, सारी धरती धर्मशाला है, धर्म कमाण दी जगह, धर्म नू समझण दी जगह, धर्म नू अपनाण दी जगह। धर्म दे अखरी अर्थ ने धारण करना, अखरी अर्थ ए बनदे ने, संस्कृत दा ए शब्द है धर्म, अखरी अर्थ बनते ने धारण करना, किसनों नियम नो मर्यादा धारण करना है, किसनों नियम नो धारण करना है, किसनों मर्यादा, मर्यादा नियम। फिर सतगुरु समझाते ने इस तरह धारण करना है जिमें जमीन देच रातां ने रुत है थित है वार है मर्यादा दे चल रही है, नियम पूर्वक चल रही है, सब कुछ मर्यादा देच है। जगत देच बेमर्यादा कुछ भी नहीं, सूरज चंद तारे सब मर्यादा दे चल रहे हैं, नियम दे चल रहे हैं। अरबां खरबां तारे ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ते कहंदे ने कई करोड़ां सूरज ने अनंत, कई कोट शशि अर सूर निखत्र, कई करोड़ां सूरज चंद तारे ने, कोई एक सूरज अनंत पसारा है और सारे का सारा गर्दिश दे चाहे रुके होया कुछ भी नहीं है। पर मजाले किधरे टकराव हो जाए एक्सीडेंट हो जाए नहीं है, इसका मतलब किसी तरतीब दे चाहे किसी मर्यादा दे चाहे। साहब कहते ने जिमें सब कुछ मर्यादा दे चल रहा है, सूरज चंद तारे जमीन रातां रुतां थितवार ये सारे मर्यादा दे चल रहे ने, तू भी मर्यादा दे चल, तेरा वेखना मर्यादा दे चोवे, तेरा बोलना मर्यादा दे चोवे, तेरा सुनना मर्यादा दे चोवे, तेरा खाना मर्यादा दे चोवे, तेरा पीना मर्यादा दे चोवे, तेरा पहनना मर्यादा दे चोवे, तेरा सोचना मर्यादा दे चोवे, तेरा जीवना भी मर्यादा दे चोवे, तेरा मरना भी मर्यादा दे चोवे, सब कुछ मर्यादा, तेरा हासा भी मर्यादा दे चाहिदा है, तेरा रोना भी मर्यादा चाहिदा है, सब कुछ मर्यादा दे, धर्म दे, धर्म तो मुराद मर्यादा नियम। और इस तरह तो नियम दे चल जैसे सब कुछ नियम दे चल रहे हैं। नियम समझाने की लोड़ मनुख नूं पै गई, पशुओं नूं समझाने की लोड़ नहीं, यकीन जानो नियम दे चल रहे हैं। कदों सोना चाहिए कदों जागना है, ये तो मेरे ख्याल पंछियों तो पूछ रही है। ज्यों सूरज गरूब आता है ये घर के तरफ आलणिया की तरफ उडारियां ला देंगे, दौड़ पैंदे ने, खास करके चिड़िया पहुंच जांदियां ने आलणिया दे, चहचहांदियां ने, गीत गांदियां ने, खुश आउंदियां ने, प्रसन्न होदियां ने। और ज्यों रात का पहला पैर समाप्त होंदा है, समाप्त होंदे होंदे तक खामोश हो जांदियां, सौ जांदियां। ज्यों रात का चौथा पैर शुरू होंदा है, चहचहाना शुरू, गीत गाना शुरू, उठ बैठियां, ये नियम दे सौंदियां ने, नियम दे उठदियां ने ये चिड़िया। तदी ते बाबे फरीद ने कह दिता, हम बलहारे तिना पंखियां, जंगल जिन्ना वास, ककर चुकन थल वसन रब ना छोड़न पास। रबी नियम नु छोड़ दिया नहीं, मर्यादा दे जी रही है। ज्यों पो फुटी है गीत गाना आरंभ हो गया, ज्यों पूरा चानना हो गया रिजक दी तलाश दे चल पईयां, ज्यों सूरज गरूब होण नु आया लाली छा गई है, इन्होंने वापस आना शुरू कर दिता है, पहुंच गई ने अंधेरे तो पहले पहले अपने आलणिया विच, गीत गांदियां हुई वापस आई ने और गीत गांदियां गांदियां सो जांदियां ने, फिर अमृत वेले चहचहांदियां हुई ये उठदियां ने, गीत गांदियां हुई ये उठदियां ने। एक बंदा ही है सौ तरह के स्यापे लैके रात को सौंदा है ते सौ तरह दियां चिंतावां लैके सवेरे उठदा है, रोंदा होया सौंदा है, रोंदा होया जागदा है। ना नियम दे इसका सोना है, ना नियम दे इसका जागना है, ना नियम दे इसका खाना है, ना नियम दे इसका पीना है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, मैं तो कई दफा हैरान हो जाना, धूम्रपान स्मोकिंग धुआं पिया पींदा है, कोई पशु नहीं पींदा, किसी पशु नूं कह के देख लो धुआं पीवे नहीं पीएगा। पशु ने अगर उसके कोल जबान आती तो उन्हें साफ कह देना, कह देना सी दूध पियांगा पानी पियांगा, धुआं बंदा पीवे मैं क्यों पियां, धुआं सिर्फ मनुख पींदा है। और ये गैर नियम है, परमात्मा ने धुआं सानू पीण वास्ते नहीं आख्या, ये प्राकृतिक नहीं है, रब्बी नहीं है, नियम दिच नहीं है। ये तो मैं इस तरह का एक उदाहरण दिता है, मदरा शराब,
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਪੀਣਾ ਹੈ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਤਨੀ ਭੁੱਖ ਉਤਨਾ ਖਾਣਾ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣਾ ਗੈਰ ਨਿਯਮ ਬੇਮਰਿਆਦਾ, ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਵੀ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਰਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਅਰਬ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਈਰਾਨ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਰਕਾ ਹੈ। ਹੁਮੇਨੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁਰਕੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼, ਇਰਾਕ ਹੈ, ਕੁਵੈਤ ਹੈ, ਟੂਨਿਸ਼ ਹੈ, ਮਰਾਕਸ਼ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੁਰਕਾ ਹੈ, ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਵਸਤੂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿ ਗਈ। ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਈਸਾਈਅਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਨਤਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਗਨਤਾ। ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਬਾਬਾ, ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈ ਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ, ਮਨ ਮੈਂ ਚਲੇ ਵਿਕਾਸ। ਪਹਿਨਣਾ ਸਿਰਫ ਤਨ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਨ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਮਹਿਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਈਸਾਈਅਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ, ਮਾਸ ਖਾਏਗਾ। ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ ਗਊ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗੀ, ਘਾਸ ਖਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਕਸੀਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਛ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਖੰਡ। ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ। ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਸਤ ਪਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ, ਖਾ ਲਿਆ, ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਹੱਸਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਰੋਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਗੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਹਾਸਾ ਕਿਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ? ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹਾਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਬਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਸਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਥਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਸਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬਨ 90% ਮਜ਼ਾਕ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੌਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੱਸਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੰਗਾ ਟੇੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਸਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਨੇ ਲੋਕ ਮਸਕਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋਕਰ ਇਹ 2-2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਟਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਸ਼ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬੋਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੱਕ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਗਏ, ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਟੁੰਡਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ। ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ। ਬਬਰ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਭਗਤ ਵੀ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਲੇ ਮੈਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਲੋਕੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹੀ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੈਸੇ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੇ, ਗਮ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਨਾਓ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਜੈਸੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, और कहने जिस नूं अपनियां कमजोरियां दिखाई दे जान वह साधक है, इस मार्ग ते चल पे है, ते जिसने कमजोरियां नूं दूर कर छड़िया साधु हो गया, संत हो गया। साध नाम निर्मल तां के करम। लेकिन पहला कदम तो यही है कि अंदर कमजोरियां दिखाई देनगियां। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर उहदा एक शेर सामने आया, वह कहिंदा है रंगून की कैद विच सी, उत्थे ही मरिया है, और जब जेल की तंग तारी कोठड़ी विच अंग्रेजां ने बंद कर दिता तो होर कोई चारा रहा ना, बार बार अपने आप के नाल बैठना बेचैन दुखी परेशान, तो आखिर तस्बी फेरना शुरू कर दिते, नमाज पढ़ना शुरू कर दिता है, सहजे सहजे ध्यान गहरा जान लग पाया। रब का जपया हुआ नाम व्यर्थ नहीं जाता, यह भी मैं अर्ज करते हैं। पतत पावन हर बिरद सदाए, एक तिल नहीं पन्ने काले। एक तिल जितनी कालना व्यर्थ नहीं जाती, लिखे लगती है फली बहुत होती है। एक मिनट का जपया हुआ नाम भी व्यर्थ नहीं जाता, एक घंटे की की हुई बंदगी भी व्यर्थ नहीं जाती है, कोई करे सही। बहादुर शाह जफर का ध्यान अंतरमुखी होने लग पाया, और यह बड़ा बुलंद पाया शायर सी, कवि सी। इहदी यह नज़म मार्फत नाल भरी हुई है, बहुत वड्डी सच्चाई नाल भरी हुई है। यह कहिंदा है जब न थी अपने गुनाहों की खबर, देखते थे दुनिया के ऐबो होना, जब अपने गुनाहों पे पड़ी निगाह तो जहां में कोई बुरा ना रहा। जफर आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही आलम फैजो जका, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। कहना जद मेरिया निगाहां बार सन तो दुनिया कोई विंगी दिसदी सी, कोई टेढ़ी दिसदी सी, कोई कुरूप दिसदा सी, कोई चोर दिसदा सी, कोई ठग दिसदा सी, कोई बेईमान दिसदा सी, कोई शैतान दिसदा सी, बस सब कुछ यही दिसदा सी। पर आज ध्यान अंतर्मुखी हो गया है, बाकी दुनिया ते खुदा का रूप दिखाई देन लग पई है, मैनू अपना आप शैतान दिखाई देन लग पई, मैनू अपने औगण दिखाई देन लग पई, बाकी दुनिया ते चंगी दिखाई देन लग पई है। अंतर्मुखी होण दी एक अवस्था है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। साडा कोई दावा नहीं कि असी चंगे हाँ, पर साडा ऐसा कोई आखना नहीं कि दुनिया बुरी है। एक अवस्था बनती है हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। पहले अपनियां बुराइयां दिखाई देनियां। भगत कबीर कहते ने कबीर सब ते हम बुरे, पर जे साडे कोल फैसला कोई लवे ते असीं आखांगे कबीर सारिआं नालों चंगा है, सारिआं नालों महान है, सारिआं नालों उत्तम है। पर कबीर कहिंदा है कायनात विच जितने मनुख ने मैं सारिआं नालों भैड़ा। ते अमृतमई बचन ने इन्हां नूं कितरे अतकथने भी ना समझ लेना, यथार्थ ने कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझया मीत हमारा सोए। अंतरमुखी नूं अपनियां कमजोरियां दिखाई देनियां ने, वो बाहर लोकां दे उत्ते उपर उपर निगाह रखदा है, गहरा नहीं जांदा, तो बाहर ते हर एक दे कोल कोई ना कोई गुण है। मनुख अपनियां चंगियाइयां दी प्रदर्शनी करदा है, नुमाइश करदा है। चंगियाइयां ते बंदे ने उपर रखी होईयां ने, मैं दानी हाँ, मैं ज्ञानी हाँ, मैं सत्संगी हाँ, पर यह ठग है, यह चोर है, झूठा है, तो बंदे ने सब कुछ छुपा के रखे है, ये तो बंदे ने सब कुछ छुपा के रखे, पर्दे च रखे है, हर एक ने पर्दे पाए हुए हैं।